हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जोया हल्दी के निमंत्रण देने शेर की गुफा में पहुँची थी। अबीर ने उसकी आवाज़ नहीं पहचानी, किंतु जोया के जाने लगे तो उसने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। जोया ने उसे बहुत बातें बताईं, पर अबीर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्हीं बातों के बीच अबीर ने जोया को प्रपोज कर दिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, उसने कहा। ये सुनते ही जोया का दिमाग मानो फ्रिज सा हो गया। हिम्मत जुटाकर उसने अबीर को बताया कि वो माँ बनने वाली है। बस फिर क्या था, अबीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका दिमाग एकदम सुन हो गया। वो उसी हालत में अपने कमरे में एक तरफ बैठा रहा। उसकी आँखों के किनारे भीग चुके थे। अबीर ने अपनी उंगली आँखों पर लगाई और अपने आंसू को उंगली पर लेकर देखा। शायद जिंदगी में पहली बार उसने अपनी आँखों के आंसू देखे थे। वहीं जोया अबीर के घर से निकलकर सीधा हल्दी के फंक्शन में पहुँच चुकी थी। अबीर ने क्या कहा था और उसने क्या सुना था, सब कुछ भुलाकर उस वक्त वो अक्रम और रिया के फंक्शन को अच्छे से करवा रही थी। अबीर राठौड़ ज्यादा देर अपने कमरे में पड़े रहने वाला इंसान नहीं था। किसी आम आदमी का दिल टूटता है तो शायद किसी को पता चलता है, किसी को नहीं, लेकिन यहाँ तो अबीर राठौड़ का दिल टूटा था। जब तक पूरे शहर को पता न चल जाए तब तक बात ही क्या थी। अबीर राठौड़ उठा और उसने अपने आंसुओं को बड़ी बेरहमी से साफ किया और अच्छे से ड्रेसअप करने लगा। आखिरकार उसे हल्दी के फंक्शन में जाना था। अबीर राठौड़ ने बड़े ही अच्छे से सूट बूट पहने और काले रंग के चश्मे लगाकर बाहर निकला। तभी उसने देखा कि जोया को शहर भर में ढूंढने गए उसके सारे आदमी वापस आ चुके थे। अबीर राठौड़ को देखते ही वे सब अपना सिर झुकाकर उसके सामने खड़े हो गए। रोहित आगे आया और बोला, ब्रो, भाभी का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन तुम परेशान मत होना, हम बहुत जल्द उन्हें ढूंढ लेंगे। जैसे ही रोहित ने ये सब कहा, अबीर राठौड़ ने अपना चश्मा उतारा और रोहित की ओर गहरी नज़र से देखा। फिर उसने चश्मा वापस पहन लिया और अपनी हवेली से बाहर जाने लगा। रोहित अबीर की आंखें देखकर काफी डर गया था, क्योंकि उसने आज तक अबीर की ऐसी लाल आंखें नहीं देखी थीं। अबीर की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी दोनों आंखों में खून उतर आया हो। अबीर बिना कार के पैदल ही जा रहा था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उससे पूछ सके कि वो कहाँ जा रहा है। तब रोहित ने अबीर राठौड़ के सभी आदमियों को इशारा किया और वे सब भी अबीर के पीछे पीछे चलने लगे। वहीं दूसरी ओर अरहम ने अरमान से 2 दिन लिए थे ताकि वो अपने हॉस्पिटल वगैरह का चेकअप करा ले। अगले ही पल वो तैयार होकर हॉस्पिटल के नाम पर घर से निकल चुका था। अरहम ने कुछ गार्ड्स उसे साथ ले जाने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। भाई, इतने दिन से बिस्तर पर पड़े पड़े मैं अपने आप को बहुत लाचार और बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन अब नहीं, मैं अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहता हूँ बिना किसी सहारे के, उसने कहा। जैसे ही अरहम ने अरमान से ये बात कही, उसे कुछ लगा उसकी बातों में, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया और उसे अकेले जाने दिया। वहीं राजवीर ने राहत की सांस ली कि चलो कम से कम ये बिजनेस संभालने का बोझ तो उतरा उसके सिर से। राजवीर ने सोचा, क्यों ना इस खुशी की बात को अपनी बहन के साथ मनाया जाए। फिर कुछ सोचता हुआ वो मेहर के कमरे में चला गया। उसने देखा मेहर अपने कमरे की बेडशीट ठीक कर रही थी। राजवीर ने उसे पीछे से पकड़ लिया और फिर अपना गंदा खेल शुरू कर दिया। मेहर चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर सकती थी। राजवीर अपनी पूरी मनमानी उसके जिस्म पर चलाता था, जहाँ मन होता चूमता, जहाँ मन होता काटता या नोचता। मेहर एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती थी, वो कुछ नहीं कह पाती थी। वो अच्छे से समझ चुकी थी कि राजवीर ने केवल अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही उससे शादी की थी, ताकि उसे कोई रोक टोक ना सके। लड़की का जिस्म तो उसे बाहर भी मिल सकता था पैसे देकर, लेकिन राजवीर एक पुलिस वाला था, वो इस तरह का रिस्क नहीं ले सकता था। वैसे भी अनुराधा के केस के बाद से उसकी छवि काफी खराब हो चुकी थी, अब वो और किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता था अपनी इज्जत को लेकर। वहीं अरहम सीधा अस्पताल ना जाकर क्लब में चला गया था, जहाँ चांदनी काम करती थी। लेकिन जब उसने वहाँ जाकर चांदनी के बारे में पता किया तो वो चौंक गया, क्योंकि चांदनी उसी दिन से वहाँ काम पर नहीं गई थी जिस दिन उसने उसे किडनैप कराया था। मन ही मन अरहम सोचने लगा, आखिर कहाँ हो तुम चांदनी, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज एक बार मेरे सामने आ जाओ। वैसे ही अरहम क्लब से चांदनी के घर का पता लेकर उसके घर की ओर चल दिया था, और जब वो पूरे 40 मिनट बाद उसके घर पहुँचा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ भी उसे चांदनी नहीं मिली थी। अरहम ने उस घर के मकान मालिक से पूछताछ सर्च की, लेकिन उसने बताया कि चांदनी तो उस दिन अपनी माँ और भाई को लेकर वहाँ से चली गई थी। तब से लेकर आज तक हमने उसे नहीं देखा था। अरहम अब मायूस सा होने लगा था। वो हर हाल में चांदनी से मिलना चाहता था। तभी उसके दिमाग में दूसरा नाम आया, राजा का। लेकिन राजा का कोई अता पता तो उसके पास नहीं था और राजवीर से वो ले नहीं सकता था। तब अरहम कुछ सोचकर सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ाने लगा था और उसकी आंखें चांदनी और राजा को ही ढूंढ रही थीं, लेकिन कहीं भी उसे वे लोग नहीं मिले थे। वहीं दूसरी ओर सुधाकर जितना अनुराधा को जानता था वो उसका फैन बन चुका था, इसलिए वो राजवीर की जगह अनुराधा से मिलना चाहता था और उसका खबरदार बनना चाहता था। सुधाकर को लगता था अनुराधा जो भी कुछ कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। आखिर इतना जुल्म होने के बाद इंसान भला और क्या कर सकता था। इसलिए सुधाकर जी ने अनुराधा से मिलने का फैसला किया और उसके घर जा पहुंचा। जब अनुराधा को खबर मिली कि कोई है जो उससे मिलना चाहता है, तब अनुराधा चौंक गई और बोली, भला इस मासूम से दिखने वाले आदमी को मुझसे क्या काम हो सकता है, और इसका चश्मा तो देखो कितना फनी लग रहा है। अनुराधा सुधाकर जी के बारे में अपनी राय बनाते हुए उसके पास चली गई। जैसे ही सुधाकर अनुराधा को देखा वो देखता ही रह गया। वो अपने फोटो से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तब अनुराधा ने सुधाकर जी से कहा, यस कहिए, कौन है आप? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तब सुधाकर अपने आप को संभालते हुए बोला, वो मैम दरअसल सुधाकर का ध्यान अनुराधा की आधे से ज्यादा बाहर निकली हुई छाती पर था, इसलिए उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। वो उसे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बार बार वो अटक सा रहा था। तब अनुराधा उसकी आंखें पड़ चुकी थी, इसलिए उसने अपने पास रखा हुआ एक बड़ा सा तकिया अपनी गोद में रख लिया, जिससे उसका काफी सारा हिस्सा कवर हो गया था। और तब वो सुधाकर से बोली, बोलो कौन हो तुम और क्या कहना चाहते हो? तब सुधाकर ने कहा, मेरा नाम सुधाकर है और मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ जो डिपार्टमेंट के लिए लोगों की डिटेल खबर निकालने का काम करता हूँ। एक्चुअली मैडम, मेरा आखिरी काम आपकी डिटेल निकालना था, जो कि मैं बखूबी निकाल चुका हूँ। तब अनुराधा अपने माथे पर सिलवट लाते हुए बोली, तो क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? तब सुधाकर बोला, नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। वो एक्चुअली आपकी कहानी जानने के बाद मुझे आपसे हमदर्दी हो गई है, तो बस मैं आपसे इतना कहने आया हूँ कि अगर आपको कभी भी मेरी किसी मदद की जरूरत पड़े तो जरूर याद कीजिएगा। ओह ओके मैडम, और हाँ, आप फिकर ना कीजिएगा, मैं आपकी एक भी इन्फॉर्मेशन राजवीर सिंघानिया को नहीं दूंगा। अनुराधा को सुधाकर की बात सुनकर यकीन ही नहीं हुआ था। वो तो बस हैरत से आंखें फाड़ते हुए उसे जाते हुए देखती रही थी और सोच रही थी, क्या सच में इस दुनिया में अभी भी कहीं इंसानियत बाकी है, और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई थी। वहीं दूसरी ओर हल्दी के फंक्शन में अक्रम और रिया के धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी थी। जन्म जन्म साथ चलना यूं ही,
वो रोमांटिक गाने पर अक्रम और रिया काफी देर तक थिरकते रहे थे। थोड़ी देर कपल डांस करने के बाद उन्होंने जोया को भी डांस करने के लिए खींच लिया। जोया बेमन से नाचने लगी और बाकी जितने लोग थे वे सब भी वहां झूम रहे थे। हर कोई अपनी मस्ती में मग्न था, बस सब आज जी भर कर जी लेना चाहते थे। जोया की वजह से उन सभी लोगों को वो एंजॉयमेंट मिला था। और इसी शोरगुल के बीच अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। तभी अचानक लगातार ढेर सारी गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सब के सब पीछे मुड़कर देखने लगे और उन्होंने देखा, बड़े ही स्टाइल के साथ अबीर राठौर चला आ रहा था। और जिस जिस की भी नज़र अबीर राठौर पर पड़ती वो वहीं सर झुका लेता। धीरे धीरे अबीर उस भीड़ को पार करता हुआ जोया, अक्रम और रिया के पास जा पहुंचा। और जितने लोग वहां खुशी से झूम रहे थे वे तो ऐसे हो चुके थे मानो उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। सब एकदम खामोश थे, किसी की भी चूं करने की आवाज तक नहीं आ रही थी। अक्रम का तो शौक के मारे बुरा हाल था, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि अबीर राठौर उसके सामने था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान की वजह से उसे रातों रात अपना फ्लैट छोड़कर यहाँ शिफ्ट हुआ था वो यहाँ इतनी आसानी से कैसे आ सकता था, और आकर उसके सामने भी वो खड़ा हो चुका था। तभी अबीर ने डीजे वाले की ओर इशारा किया और अबीर का इशारा मिलते ही उसने एक जबरदस्त गाना बजा दिया। और देखते ही देखते अबीर ने एक सॉलिड डांस करना शुरू कर दिया था। अबीर डांस करते हुए अपनी हड्डी तक तोड़ रहा था। वो बड़ा ही भयंकर डांस कर रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो उस वक्त दर्द में था, मानो अपने आप को वो किसी चीज की सजा दे रहा हो। रोहित अबीर को इस हालत में देखकर काफी परेशान था। वो सोच रहा था आखिर अबीर को क्या हो गया है, और वो उसे रोकने के लिए स्टेज की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन अबीर ने अपना हाथ दिखाकर उसे वहीं रोकने को बोल दिया था।